मुख्य समाचारों में ऑस्ट्रेलिया के इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कानूनों को खत्म करने की तैयारी। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया द्वारा हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज पर सामाजिक दूरी प्रतिबंधों में ढील। और भारत में कल बृहस्पतिवार को किसानों के साथ चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने कहा, अधिकतर बिंदुओं पर बनी सहमति। लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल सरकार द्वारा एक लैंडमार्क खुफिया रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशों पर सहमति व्यक्त करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कानून को खत्म करने की तैयारी है। पूर्व खुफिया प्रमुख डेनिस रिचर्डसन की 1600 पन्नों की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में से एक ये है कि मौजूदा कानूनी ढांचा अनावश्यक रूप से जटिल है और तकनीकी के सामने प्रभावी नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि दूरसंचार उपकरण निगरानी और एजियो की शक्तियों से निपटने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कानून बनाए जाएं। फेडरल अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पॉर्टर का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नया कानून लिखने की प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगेंगे।
That in itself would be perhaps the biggest national security legislative project in recent history, and it would require the repeal and rewriting of nearly 1,000 pages of existing law on warrants, interception and telecommunications.
ऑस्ट्रेलिया में चीन के उपराजदूत ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में सैनिकों द्वारा कथित युद्ध अपराधों के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अत्यधिक रूप से प्रतिक्रिया दिखाई। इस सप्ताह की शुरुआत में श्री मॉरिसन ने चीनी सरकार के एक अधिकारी से उस ट्वीट को हटाने की मांग की थी जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक को एक परिवर्तित छवि में एक अफगान बच्चे के गले पर चाकू रखे दिखाया था। उपराजदूत वॉन्ग चीनिंग का कहना है कि श्री मॉरिसन द्वारा उस पोस्ट पर की गई प्रतिक्रिया ने चीन में इस मुद्दे पर अधिक ध्यान आकर्षित किया है।
Written report in China. More people are attentive to what has happened in Afghanistan. So, and also people wondered why a national leader would have such a strong opinion to an artwork done by a normal young artist in China.
सिडनी होटल के एक संगरोध कार्यकर्ता से जुड़े एक संक्रमण के सूत्र की अभी भी जांच चल रही है। न्यू साउथ वेल्स में फिलहाल स्थानीय स्तर पर अधिग्रहित और कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। होटल के संगरोध में लौटे यात्रियों में 5 संक्रमण हैं, जबकि दूसरा मामला आइबिस और नोवोटेल होटलों में एक क्लीनर का है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजर्ड का कहना है कि अत्यधिक संभावना है कि महिला का संक्रमण विदेश से आया होगा। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेरेमी मैकोमी का आग्रह है कि सभी यात्री चेक करें यदि उन्होंने 27 से 30 नवंबर के बीच उसी ट्रेन या लाइट रेल सेवाओं में यात्रा की थी।
People who were or may have been in the same carriage as the case are considered close contacts and should immediately test and isolate until further notice. People who traveled on these services and were not in the same carriage should test and self-isolate until a negative result is received. Anyone living in the Minto and Lidcombe areas who is feeling unwell, no matter how mild with the symptoms, is also urged to come forward for testing immediately and isolate until a negative result is received.
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज 4 वर्ग मीटर के नियम की जगह 2 वर्ग मीटर नियम होने पर अपनी क्षमता को 2 गुना करने में सक्षम होंगे। प्रतिबंधों की ढील मूल रूप से दिसंबर के मध्य में प्रभावी होने वाली थी, लेकिन राज्य की संक्रमण समिति ने इसे तुरंत प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया है और दूसरे नियमों में भी शीघ्र ही ढील दी जाएगी। पुलिस आयुक्त ग्रांट स्टीवंस, जिन्होंने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की सलाह को खारिज किया, उनका कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स ने असाधारण रूप से काम किया है।
We are now at a position where we only have somewhere in the order of about 275 people in home quarantine. And you may remember the numbers were up around 4,000 or 5,000 at the height of our response to this particular cluster. That, taking into account the take-up of QR codes, has given us some confidence to manage the risk around this current response to the parafield cluster.
New South Wales में एक स्थानीय अधिग्रहित कोरोना वायरस केस के बाद फेडरल सरकार क्रिसमस के समय तक घरेलू सीमाओं को फिर से खोलने की योजना पर सभी को टिके रहने का आग्रह कर रही है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया द्वारा न्यू साउथ वेल्स सीमा खोलने में अड़चन आ सकती है. प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने वीकेंड पर निर्णय पर विचार करने की बात की है, लेकिन गृहमंत्री पीटर डाटन का कहना है कि प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को पूर्वी राज्यों की क्षमता में विश्वास होना चाहिए.
And if it requires an elevation of the response, well, that will come. But on the available evidence at the moment, it's clear that they've contained it and we shouldn't see a closure of borders.
दोनों ही राजनीतिक पक्षों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए ब्रिटेन का उदाहरण नहीं अपनाना चाहिए. यूनाइटेड किंगडम सरकार ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को अधिकृत करने के लिए आपातकाल शक्तियों का उपयोग किया है. ये वैक्सीन अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन रेगुलेटरी बॉडी द थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन 2021 की शुरुआत में कम से कम एक वैक्सीन को मंजूरी देने की उम्मीद करती है. उप विपक्ष नेता रिचर्ड माल्स ने नाइन नेटवर्क को बताया कि सरकार का सतर्क रहना सही है.
The TGA does need to do its work, and while we want to see this as quickly as possible, it obviously can't cut corners. I mean, it's a really important process. This needs to be done safely. So I think we've got to give the TGA the space to do what it needs to do.
भारत में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. कृषि मंत्री ने कहा कि कल शनिवार यूनियन के साथ फिर से बैठक होनी है और शायद उस दिन किसी निर्णय पर पहुंचेंगे. बताया गया है कि किसानों और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा है. मंडियों को सशक्त बनाने पर विचार हुआ. कृषि मंत्री ने कहा कि पराली के विषय पर ऑर्डिनेंस को लेकर किसानों की शंका है, विद्युत एक्ट को लेकर शंका है. एक्ट के जो प्रावधान हैं उनमें किसानों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है, फिर भी लोगों को शंका है तो उसका समाधान निकालने के लिए सरकार तैयार है. वहीं दूसरी ओर कल हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि आंदोलन वापसी का कोई सवाल नहीं है. सरकार ने बातचीत की कोशिश की है, लेकिन हमारी मांग है कि कानून वापस होना चाहिए. किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने विचार के लिए एक दिन का वक्त मांगा है. और भारत में आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है. और भारत में आज यानी शुक्रवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 36,595 नए कोविड 19 केस दर्ज किए गए हैं. और इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 95,71,000 से ऊपर हो चुकी है. इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 90,00,000 से अधिक है और इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,16,082 है. और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 54.82 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में बास्केटबॉल में सिडनी किंग्स ने एडम वीर को विल वीबर की जगह एनबीएन क्लब के नए मुख्य कोच के रूप में नामित किया है. पिछले साल से वीवर्स के सहायक फोर्ड को 36 वर्षीय ह्यूस्टन रॉकेट के प्रस्थान के बाद एनबीए में इस अंतरिम पोजीशन के लिए नामित किया गया है. और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बादल छटेंगे. अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री. एडिलेड में बौछारें. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री. मेलबर्न में एक दो बौछारें. अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री. होबार्ट में बारिश बढ़ेगी. अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री. कैनबरा में बौछारें. अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री. सिडनी में बौछारें. तूफान की संभावना. अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री. ब्रिस्बेन में धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री. और डार्विन में बौछारें. तूफान की संभावना. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।